नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। क्रिस ब्रायंट की सीसीएनपी स्विच 315 स्टडी गाइड सीसीएनपी सक्सेस श्रृंखला की प्रमाणन केंद्रित तकनीकी पुस्तक है। इसका उद्देश्य उस समय के सिस्को सीसीएनपी स्विच 315 परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए पाठक को तैयार करना था, जिसमें एंटरप्राइज स्विचिंग की उन्नत अवधारणाएं शामिल थी। यह कोई व्यापक नेटवर्किंग सिद्धांत ग्रंथ नहीं, बल्कि स्पष्ट व्याख्या, चित्रों और प्रयोगशाला अभ्यासों पर आधारित अध्ययन सहायक सामग्री है। पुस्तक का केंद्र केवल कमांड याद कराना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि स्विच्ड नेटवर्क में लूप, सुरक्षा जोखिम, ट्रैफिक विभाजन और लेयर 3 फॉरवर्डिंग जैसी समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं और सिस्को स्विच पर उन्हें कैसे संभाला जाता है। ब्रांड का घोषित तरीका सीधा और व्यावहारिक है, जिसमें वास्तविक सिस्को स्विचों पर किए गए लैबों को महत्व दिया गया है। चूंकि ये परीक्षा अब वर्तमान सिस्को प्रमाणन पथ का हिस्सा नहीं है, इसलिए पुस्तक को समकालीन परीक्षा गाइड के बजाय स्विचिंग की बुनियादी से उन्नत कार्यप्रणालियों और पुराने सीसीएनपी स्विच पाठ्यक्रम के अध्ययन संसाधन के रूप में देखना अधिक उचित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, उन्नत स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से लेयर 2 लूप का नियंत्रण। पुस्तक का एक प्रमुख क्षेत्र उन्नत स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन है। स्विच्ड ईथरनेट नेटवर्क में अतिरिक्त भौतिक लिंक उपलब्धता बढ़ाते हैं, लेकिन वही अतिरिक्त रास्ते लेयर 2 लूप ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म और मैक एड्रेस टेबल की अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। इसलिए स्पैनिंग ट्री का उद्देश्य किसी लिंक को स्थायी रूप से बेकार बनाना नहीं, बल्कि टोपोलॉजी में लूप मुक्त सक्रिय पथ चुनना है। ब्रांड की व्यावहारिक शैली में इस विषय का मूल्य केवल परिभाषाओं तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि उम्मीदवार को यह समझना पड़ता है कि रूट ब्रिज का चुनाव पोर्ट की भूमिका और कन्वर्जेंस नेटवर्क के वास्तविक व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। उन्नत कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन इस कारण महत्वपूर्ण है कि डिफॉल्ट निर्णय हर डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं होते। प्रशासक को यह नियंत्रित करने की जरूरत हो सकती है कि किस स्विच को प्राथमिक रूट बनना चाहिए और विफलता की स्थिति में कौन सा वैकल्पिक पथ सक्रिय होगा। लैब आधारित अभ्यास इस सिद्धांत को सत्यापित करने की आदत विकसित करते हैं, जैसे टोपोलॉजी परिवर्तन के बाद पोर्ट स्थिति और ट्रैफिक पथ की जांच। इस प्रकार विषय परीक्षा के प्रश्नों के साथ साथ उच्च उपलब्धता और नियंत्रित लेयर 2 डिजाइन की सोच भी विकसित करता है। दूसरा, स्विच सुरक्षा में अनधिकृत पहुंच और गलत ट्रैफिक से बचाव स्विच सुरक्षा पुस्तक का दूसरा केंद्रीय आयाम है। स्विच को केवल ट्रैफिक आगे भेजने वाला उपकरण मानना अधूरा दृष्टिकोण है, क्योंकि एक्सेस पोर्ट ही अनधिकृत डिवाइस, नकली पहचान, अप्रत्याशित ब्रॉडकास्ट और गलत कॉन्फ़िगरेशन के प्रवेश बिंदु बन सकते हैं। इस विषय में सुरक्षा को नेटवर्क की उपलब्धता से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपयोगकर्ता अनधिकृत स्विच जोड़ दे या किसी पोर्ट पर अपेक्षा से अलग व्यवहार शुरू हो जाए, तो उसका प्रभाव केवल एक डेस्क तक सीमित नहीं रह सकता, वह टोपोलॉजी स्थिरता और ट्रैफिक नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है। पुस्तक के पाठ्यक्रम केंद्रित दायरे में स्विच सुरक्षा का अर्थ ऐसी सुविधाओं और नीतियों को समझना है जो पोर्ट स्तर पर नियंत्रण लागू करती हैं तथा स्पैनिंग ट्री संबंधी जोखिमों को सीमित करती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा उपायों में संतुलन चाहिए। अत्यधिक कठोर नियंत्रण वैध उपयोगकर्ता या परिचालन बदलाव को बाधित कर सकता है, जबकि ढीली नीति नेटवर्क को अनावश्यक जोखिम में डालती है। इसलिए लैब अभ्यास का महत्व बढ़ता है, क्योंकि पाठक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अपेक्षित और अनपेक्षित दोनों परिणामों को देख सकता है। यह भाग उम्मीदवार को कमांड के पीछे का प्रशासनिक तर्क समझने में मदद देता है कि किस पोर्ट पर कौन सा नियंत्रण क्यों लगाया जाए और समस्या आने पर सत्यापन किस प्रकार किया जाए। तीसरा, मल्टीलेयर स्विचिंग द्वारा VLAN के बीच कुशल फॉरवर्डिंग। मल्टीलेयर स्विचिंग पुस्तक में लेयर 2 विभाजन और लेयर 3 संचार के मिलन बिंदु के रूप में सामने आती है। VLAN अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाकर ट्रैफिक को व्यवस्थित और सीमित करते हैं, पर अलग VLAN के उपयोगकर्ताओं, सर्वरों या सेवाओं को अक्सर परस्पर संचार भी चाहिए। यह आवश्यकता इंटर VLAN रूटिंग को जन्म देती है। मल्टीलेयर स्विच इस काम को स्विचिंग प्लेटफॉर्म पर ही करने की क्षमता देता है, जिससे पारंपरिक अलग राउटर पर निर्भरता और अनावश्यक ट्रैफिक चक्कर कम हो सकते हैं। पुस्तक के अध्ययन संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न केवल यह नहीं कि लेयर 3 इंटरफेस कैसे सक्षम हो, बल्कि यह है कि VLAN सीमाएं, IP सबनेट, गेटवे और फॉरवर्डिंग निर्णय एक साथ कैसे काम करते हैं। यदि इन घटकों में असंगति हो, तो समस्या कभी एक्सेस पोर्ट, कभी VLAN सदस्यता और कभी IP कॉन्फ़िगरेशन जैसी दिख सकती है। इसलिए इस विषय का व्यावहारिक लाभ क्रमबद्ध समस्या समाधान है। पाठक को पहले लेयर 2 पहुंच, फिर VLAN विभाजन और उसके बाद लेयर 3 कनेक्टिविटी को अलग अलग सत्यापित करना सीखना चाहिए, यह दृष्टिकोण बड़े कैंपस नेटवर्कों में विशेष उपयोगी है, जहां प्रदर्शन, विभागीय पृथक्करण और सेवा पहुंच को एक ही डिजाइन में संतुलित करना पड़ता है। चौथा, मल्टीकास्ट ट्रैफिक को सही रिसीवर तक सीमित रखने की आवश्यकता। मल्टीकास्टिंग का विषय पुस्तक के स्विचिंग केंद्रित दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। यूनिकास्ट में एक स्रोत एक गंतव्य को ट्रैफिक भेजता है, जबकि ब्रॉडकास्ट में ट्रैफिक पूरे संबंधित डोमेन तक फैल सकता है। मल्टीकास्ट अलग तर्क अपनाता है, जिसमें एक स्रोत का डेटा उन अनेक रिसीवरों तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने उस समूह में रुचि दिखाई हो। यह मॉडल वीडियो वितरण और कुछ समूह आधारित सेवाओं में उपयोगी हो सकता है, लेकिन स्विच के लिए चुनौती यह है कि ट्रैफिक को अनावश्यक पोर्टों तक न भेजा जाए। यदि समूह सदस्यता का सही प्रबंधन न हो तो मल्टीकास्ट ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट जैसा व्यवहार करते हुए बैंडविड्थ और एंड होस्ट संसाधन खर्च कर सकता है। पुस्तक के संदर्भ में मल्टीकास्ट समझने का अर्थ यह पहचानना है कि स्विचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रिसीवर की सदस्यता और ट्रैफिक वितरण के बीच क्यों समन्वय चाहिए। उम्मीदवार को यह भी समझना पड़ता है कि समस्या का लक्षण क्या हो सकता है, जैसे किसी ऐसे पोर्ट पर ट्रैफिक दिखना जहां उसकी जरूरत नहीं है, अथवा अपेक्षित रिसीवर तक स्ट्रीम न पहुंचना। इस विषय की उपयोगिता इस कारण बढ़ती है कि यह केवल सामान्य पैकेट फॉरवर्डिंग से आगे जाकर नियंत्रित वितरण की अवधारणा सिखाता है। लैब उन्मुख अध्ययन यहाँ विशेष सहायक है, क्योंकि मल्टीकास्ट का व्यवहार कॉन्फ़िगरेशन और टोपोलॉजी दोनों पर निर्भर करता है। अंत में चित्रित व्याख्या और वास्तविक स्विच लैबों पर आधारित परीक्षा तैयारी इस गाइड की विशिष्टता उसके प्रस्तुतिकरण के तरीके में है। ब्रांड इसे सीधे चित्रित पाठों और वास्तविक सिस्को स्विचों पर किए गए अनेक लैबों के साथ तैयार की गई पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रमाणन पुस्तकों में यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल परीक्षा उद्देश्यों की सूची या कमांडों का संग्रह पाठक को उपकरण के व्यवहार का पर्याप्त अनुभव नहीं देता। चित्र टोपोलॉजी पथ और भूमिका जैसे संबंधों को समझने में सहायक होते हैं, जबकि लैब यह दिखाते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन लागू करने के बाद सत्यापन क्यों आवश्यक है। इसका व्यावहारिक लाभ सक्रिय अध्ययन है। पाठक किसी सुविधा को पढ़ने के बाद उसे कॉन्फ़िगर कर सकता है, आउटपुट देख सकता है, अपेक्षा से परिणाम की तुलना कर सकता है और त्रुटि होने पर कारण खोज सकता है। यही प्रक्रिया परीक्षा में परिदृश्य आधारित प्रश्नों तथा कार्यस्थल पर ट्रबल शूटिंग दोनों के लिए उपयोगी होती है। फिर भी पुस्तक की सीमा भी स्पष्ट है। यह एक विशेष अब सेवानिवृत्त परीक्षा के लिए लिखी गई गाइड है, इसलिए वर्तमान सिस्को एंटरप्राइज प्रमाणन के नवीन ब्लूप्रिंट, सॉफ्टवेयर संस्करणों और ऑटोमेशन केंद्रित विषयों के लिए इसे अकेला स्रोत नहीं मानना चाहिए। किंडल संस्करण के पुराने प्रारूप पर कुछ पाठकों की शिकायतें भी रही हैं, हालांकि प्रकाशक ने बाद में सुधार का उल्लेख किया। सामग्री की उपयोगिता फिर भी इसके स्पष्ट अभ्यास केंद्रित ढांचे में निहित है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो पुराने CCNP स्विच 315 पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, या आज भी सिस्को केंद्रित कैंपस स्विचिंग की मूलभूत से उन्नत अवधारणाओं को लैब के माध्यम से दोहराना चाहते हैं। नेटवर्क प्रशासक, सहायता अभियंता और प्रमाणन अध्ययनकर्ता इससे विशेष लाभ ले सकते हैं यदि उनके पास स्विच लैब एम्युलेशन वातावरण या कम से कम कॉन्फ़िगरेशन और सत्यापन को साथ में आजमाने की सुविधा हो। इसका व्यावहारिक लाभ विषयों की उस श्रृंखला में है जो वास्तविक स्विच नेटवर्क की प्रमुख चिंताओं को जोड़ती है, लूप मुक्त टोपोलॉजी, पोर्ट स्तरीय सुरक्षा, VLAN के बीच फॉरवर्डिंग और नियंत्रित मल्टीकास्ट वितरण। अन्य प्रमाणन गाइडों की तुलना में इसका अंतर ब्रांड की सरल सीधे मुद्दे पर आने वाली भाषा और वास्तविक उपकरणों पर आधारित लैबों पर जोर है। समीक्षाओं में भी इसकी स्पष्टता और व्यावहारिक उदाहरणों को उपयोगी बताया गया है। हालांकि कुछ पाठकों ने ईबुक के पुराने लेआउट तथा सामग्री की गहराई को लेकर आपत्तियां दर्ज की, इसलिए इसे किसी व्यापक आधिकारिक संदर्भ या वर्तमान प्रमाणन सामग्री का पूर्ण विकल्प मानने के बजाय समझ और अभ्यास को मजबूत करने वाला पूरक संसाधन समझना सही होगा। पाठक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि CCNP स्विच 315 परीक्षा अब सक्रिय नहीं है। फिर भी स्पैनिंग ट्री, स्विच सुरक्षा, मल्टीलेयर स्विचिंग और मल्टीकास्टिंग जैसी अवधारणाएं नेटवर्क संचालन में प्रासंगिक हैं। पुस्तक की स्थायी ताकत इन्हीं विषयों को कमांड, व्यवहार और जांच की प्रक्रिया से जोड़ने में है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्रिस ब्रायंट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।